ओम शांति।
भारत के इतिहास में केवल दो ही पुरुषों को वीर कहा गया है, एक महावीर और दूसरा वीर विक्रमादित्य। हजारों वर्ष पहले ऐसे ही एक दिन सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में महाराजा विक्रम रोज दरबार से पहले अपने महल के बाहर बहुत सारे लोगों से मिलते थे। हजारों लोग उनसे मिलने आते थे और कुछ ना कुछ भेंट देते थे। उन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण रोज आता था। वो वास्तव में एक तांत्रिक था, परंतु ब्राह्मण का रूप लेकर आता था और वो सम्राट को रोज एक फल देता था। क्योंकि इतने सारे लोग थे तो सम्राट ने कभी यह परवाह नहीं की जानने की उस फल में क्या है। वो फल वो अपने वजीर को दे देते थे। इस तरह कई दिन चला, कहीं कहीं लिखा है 10 साल तक चला। रोज सुबह दरबार से पहले दरबार के बाहर इतने सारे जो लोग, कोई कुछ देता, कोई कुछ, कोई ना कोई भेंट देता या कोई अपनी कोई शिकायत सुनाता, कोई समस्या सुनाता, तो राजा चलते थे और लोग खड़े रहते थे और ये ब्राह्मण जो कि एक तांत्रिक था रोज उन्हें एक फल देता था। राजा को बहुत आश्चर्य होता था कि ये रोज आ जाता है और मैंने आज तक कभी परवाह नहीं की ये जानने की ये फल है क्या। एक दिन उस फल को तोड़ने को कहा जाता है और जैसे ही उस फल को तोड़ते हैं तो उसमें से एक मणि हीरे जैसा बाहर आता है। तो सम्राट विक्रमादित्य कहते हैं कि आज तक इस ब्राह्मण ने जितने फल दिए हैं वो सब मुझे देखने हैं। तो सारे फलों को काटा जाता है तो हर एक फल से हीरे मोती माणिक निकलते हैं। उत्कंठा बढ़ती है। फिर सुबह राजा की वही दरबार के बाहर सबसे मुलाकात और फिर से वो ब्राह्मण वहां खड़ा है तो वो ब्राह्मण फिर से एक फल देता है। राजा उसके सामने उस फल को तोड़ते हैं, तलवार से काटते हैं और उसको वो मणि दिखाते और कहते हैं क्या प्रयोजन है तुम्हारा, क्यों इस तरह आप हमें रोज ये मणि हीरा दे रहे हो। तो वो मांत्रिक कहता है इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ है, आप जैसे बड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मैं एक सिद्धि कर रहा हूं और इस सिद्धि के लिए मुझे तुम्हारे जैसा पराक्रमी पुरुष चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य नहीं, वीर विक्रमादित्य। तो सम्राट कहते हैं कि तुम्हारी जो भी कामना है मैं पूर्ण करूंगा, परंतु वो तांत्रिक कहता है कि यहां नहीं, तुम्हें अंधेरी रात में मेरे पास आना पड़ेगा। तो वचन दे दिए, राजा को वहां जाना पड़ता है। तो सन्नाटे में राजा वहां पहुंचता है और वो तांत्रिक कुछ सिद्धि कर रहा होता है और वो तांत्रिक राजा से कहता है, सम्राट से, कि तुम्हें एक प्रेत को लाना है, एक बेताल को, जो बेताल यहां से, बेताल अर्थात पिशाच, भूत जो भी कहो, वो दूर एक वृक्ष पर लटका हुआ है, परंतु एक शर्त है, जब तुम उसे पकड़कर लाओगे तो बोलना मत बस, तुम उसे ले आओ और वो प्रेत यदि मुझे मिल जाए तो ही मेरी मंत्र की सिद्धि हो सकती है। तो विक्रमादित्य जाते हैं तो प्रेत लटका हुआ होता है, वो प्रेत को वो पकड़ते हैं, अपने कंधों पर बिठाते हैं और यात्रा चालू होती है। यात्रा बहुत लंबी होती है, तो वो बेताल कहता है कि मैं क्या कहूंगा तुमको, सबने सुना है, मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाऊंगा, परंतु यदि तुम बोले तो मैं उड़कर भाग जाऊंगा, और यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो विक्रमादित्य को तो कोई रस नहीं है इस तरह की बातों में, उसे तो अपना कार्य पूरा करना है, उस बेताल को बस पहुंचाना है। ऐसी 25 रातें 25 कहानियां वो बेताल रात भर विक्रम को सुनाता है, और हर कहानी के बाद क्या पूछता है, रहस्यमयी कहानियां होती है, एक प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे ही विक्रम उसका उत्तर देते हैं वो बेताल उड़कर वापस चला जाता है। तो ऐसी उसने कितनी कहानियां सुनाई, 25। इन कहानियों को भारत में ही नहीं विश्व भर में सुनी और सुनाई जाती है। कहानियां बच्चों की है, बेताल 25 ही उन्हें कहा जाता है। एक एक प्रश्न वो पूछता है, और यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर हे विक्रम तुम्हें नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और यदि तुमने सही जवाब दिया तो फिर मैं उड़कर चला जाऊंगा। तो आज की अव्यक्त वाणी से ऐसे 25 प्रश्न हम निकालेंगे, और यदि इनमें से हे विक्रम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल क्या कहता है विक्रमादित्य से, यदि तुमने बता हे विक्रम, यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और यदि उत्तर दिया तो वो बेताल क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। वो बेताल कौन है, माया है, विकार है। और यदि उत्तर नहीं दिया और वैसे ही चुप रह गए तो वो बेताल बैठा रहेगा कहां पर, कंधों पर, पीछा करते रहेगा, परेशान करेगा, दुख देगा। तो सभी तैयार है, कितने प्रश्न हैं, 25। सबने मुरली सुनी है, दो मुरलियां हैं, एक मुरली से 17 प्रश्न निकालेंगे, दूसरी मुरली से 8। तो इससे पहले कि हम प्रश्न चालू करें, और एक बात, इसी विक्रमादित्य का बड़ा भाई होता है भरतहरि, उसके जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा उग्रसेन के ये 6 बेटे, पहला तो गुजर जाता है, दूसरा भरतहरि जो सम्राट बनता है उज्जैनी का, उसे अपनी एक पत्नी से बहुत प्यार होता है, पिंगला नाम जिसका होता है, तीसरी पत्नी से इतना आसक्त तो इतना मोहित होता है कि दिन रात बस उसी के प्यार में डूबा रहता है। एक बार उनकी सभा में एक ब्राह्मण आता है, कोई कहते हैं गोरखनाथ, और वो उन्हें एक फल देता है और कहता है ये फल तुम जिसे भी खिलाओगे उसका यौवन तारुण्य हमेशा रहेगा और तुम इसे खा लो। तो सम्राट को तो मोह अपनी पत्नी से होता है, तो वो फल उसको दे देते हैं, परंतु वो जो पत्नी होती है उसको प्यार किसी और से होता है, राज्य का जो कोतवाल है उससे उसको प्यार होता है, तो वो सोचती है कि मैं क्यों खाऊं, क्यों ना मैं ये इसको दे दूं, क्योंकि मेरा प्यार तो इससे है। कोतवाल जो होता है उसे प्यार उसी नगर की एक नगरवधु कोई वेश्या उससे होता है, तो वो सोचता है ये मैं क्यों रखूं, क्यों ना मैं इसको दे दूं। तो वेश्या सोचती है मैं इतनी गिरी हुई नीच जाति की, क्यों मैं इस फल को रखूं, अच्छा होगा कि ये फल मैं राजा को दे दूं। तो वो फल वापस राजा को दे देती है। राजा देखता है ये तो वही फल है, और इस बीच उसका छोटा भाई विक्रमादित्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जो स्त्री है तुम्हारी पत्नी, जिसे तुमने पत्नी बना रखा है, वो दुष्चरित्रा है, उसे छोड़ दो। तो भरतहरि विक्रमादित्य को अपने राज से बाहर निकाल देते हैं। कई वर्ष गुजर जाते हैं तब तक ये चालू रहता है, और वो फल देखने के बाद भरतहरि कहते हैं कि ये तो वही फल है। वो अपनी वो पेशा से पूछते तुम्हें ये किसने दिया, वो कहती है कोतवाल ने। कोतवाल को बुलाया जाता है तुम्हें ये किसने दिया, तो वो कहते रानी ने। और भरतहरि को ऐसा वैराग आ जाता है कि वो संसार का त्याग कर देता है। संसार की आत्माओं को दिल दे दो तो क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और भगवान को दे दो तो दिल तख्त नशीन बना देता है। ऐसा वैराग उसके हृदय में जाग जाता है, संसारिक प्रेम व्यर्थ है और शूद्र है। सच्चा प्रेम एक ईश्वर का है, और इसी ईश्वरीय प्रेम के लिए वो निकल पड़ता है, और बाद में वैराग्य शतकम लिखता है, वैराग के 10 श्लोक। जब भोग विलास में डूबा हुआ होता है तो सौंदर्य शतकम लिखता है, वो भी विकारों में यदि देखा जाए काम, उसमें बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, परंतु जब सन्यासी और वैरागी बन जाता है तो वैराग के ऊपर लिखता है। तो एक तरफ है संसार का प्यार और दूसरी तरफ है ईश्वरीय प्रेम। जब संसार के प्रेम की व्यर्थता को समझ में आ जाती है मनुष्य को, तब वैराग जन्म लेता है। तो बेताल का पूछा हुआ पहला प्रश्न, यदि हे विक्रम तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो क्या कर दूंगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज की मुरली शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सभी ने दिलाराम को अपनी दिल दे दी है, यह पहला प्रश्न है उसका। क्या प्रश्न है, सबने अपनी दिल दी है या नहीं दी है कि रखी है? यदि उत्तर नहीं दिया तो भी गए, वो पेताल छोड़ेगा नहीं, और यदि उत्तर हां है तो वो उड़कर भाग जाएगा। सभी ने अपनी दिल बाप को दी है, बाप को दिल देना अर्थात बाप को दिल में बिठाना, ये है सहज राज योग। ऐसी परिभाषा कभी सुनी सहज राज योग की? हमेशा हम सुनते आए हैं आत्मा समझ बाप को याद करो। आज बाबा ने एक नई परिभाषा दी है, कौन सी परिभाषा है वो? दिलाराम को दिल दे देना। आज बाप दादा आए हैं कौन सा समाचार लेने? दिल का समाचार सुनने के लिए। तो दिल उसको दे देना अर्थात दिल में उसको समा लेना, अर्थात ये है सहज राज योग। कितनी सुंदर परिभाषा है कि भगवान को दिल दे देना, भगवान का बन जाना, उसको दिल में समा देना, समा लेना, यही योग है। योग कोई वो कठिन कार्य नहीं है, योग में मेहनत नहीं। बाबा ने कहा ऐसी दिनचर्या, ऐसा जीवन, ऐसी जीवनचर्या कि जिसमें प्रतिपल हर समय संकल्प श्वास में वो समाया है। और यदि तुमने उसको नहीं समाया तो हे विक्रम मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुमने यदि न बोला तो भी, और यदि तुम्हारा उत्तर हां है तो मैं चला, मेरा पीछा छोड़ दे, ऐसा उसमें आता है। 80-90 के दशक में टीवी पर सीरियल भी आता था, सबने बचपन में सुना होगा, देखा होगा, मेरा पीछा छोड़ दे हे राजा, तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, जिसने तुझे मेरे पीछे भेजा है वो महाधूर्त है, यहां से चला जा। विक्रम 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 वेताल वेताल वेताल। तो पहला प्रश्न क्या था कि अपनी दिल दिलाराम को दी है, यदि भगवान को दी है तो वो दिल तख्त नशीन बना देगा, यदि संसार को दी है, यदि संसारिक व्यक्तियों को दी है, यदि किसी स्त्री या पुरुष को दी है तो क्या कर देंगे, वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। संसार में लव स्टोरीज कहा जाता है, पर ये तथा कथित लव स्टोरीज बाद में सॉब स्टोरीज बन जाती है, सॉब सॉब अर्थात रोना, या फिर सुसाइड स्टोरीज बन जाती है। लव स्टोरीज सॉब स्टोरीज बन जाती है या तो सुसाइड स्टोरीज बन जाती है। पहले तो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जो बाधा होती है बहुत लड़ते हैं सबके संसार के विरुद्ध, और जब एक हो जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं। फिर शायद मजनू को लैला अगर मिल गई होती तो 6 मास में पता नहीं कुछ और हो गया होता। दूसरा प्रश्न, कोई भी स्मृति या व्यक्ति दिलाराम के बीच न आए, क्या ऐसा अनुभव है? आज की मुरली, कोई भी स्मृति और कोई भी व्यक्ति दिलाराम के बीच न आए, क्या ऐसा अनुभव है? क्या उत्तर है सबका? कोई भी व्यक्ति बीच में ना आए, उसके और हमारे ऐसा अनुभव बाबा ने कहा, स्मृति भी नहीं, कोई पास्ट कोई पुरानी अतीत की स्मृति भी आ जाए, कोई व्यक्ति यदि आ रही है तो शायद हमारा प्रेम हमारा प्यार उससे उतना नहीं है। ये दूसरा प्रश्न है। तो क्या उत्तर है सबका? बेताल को अपने कंधों पर बिठाकर चलना है या उसको भगाना है, क्या करना है? बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं, कोई भी स्मृति भी ना आए, कोई भी व्यक्ति भी ना आए, उसके और हमारे बीच में। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम चिंतन कर सकते हैं, कोई संबंध ऐसा ना हो जाए कि वो संबंध हमें उससे दूर कर दे, कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए कि उसके प्यार में उसके मोह में उसके साथ बात करते करते हम इससे बात करना भूल जाए, उसके साथ जीवन की बातें और समस्याएं शेयर करते करते जो परम है उसको भूल जाए। कोई भी व्यक्ति और कोई स्मृति भी ना आए, पुरानी स्मृति या अतीत की स्मृतियां। ये दूसरा प्रश्न है मुरली से। तीसरा प्रश्न, मन में क्या है, वाणी में क्या है और कर्म में क्या है? सभी ने मुरली सुनी है ना, तो बताओ, और नहीं अगर बताओगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी बताओ विक्रम, जल्दी बता क्या उत्तर है, मन में क्या है और वाणी में क्या है और कर्म में क्या है? मुरली से बताओ, हफ्ते भर का नहीं या साल भर का नहीं, आज की मुरली से। मन में क्या है? मन भी उसका बाप, मन भी उसका, वाणी भी उसकी, कर्म भी उसके। तो मन में क्या और वाणी क्या और कर्म क्या? मेरा बाबा मैं बाबा का वाणी में, मन में हम बाबा के, और कर्म में जो उसकी सेवा है वो मेरी सेवा, जो उसकी सेवा है वो मेरी सेवा। ये तीन चीजें बताई है। मन ऐसा हो कि मन में सहज भाव, सहज और नेचुरल रूप से बाबा 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 अनहद नाद ये शब्द गूंजता रहे कि मैं उसका हूं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पुरुष का या किसी स्त्री का नहीं, किसी देहधारी का नहीं। जीवन उसको दिया है, उसके है हम। तो मन में वो, वाणी में भी वो, और कर्म में जो भी सेवाएं कर रहे हैं, जो उसकी सेवा वो हमारी सेवा। इसके लिए कोई भी सेवा छोटी नहीं है, क्योंकि यज्ञ की सारी सेवाएं किसकी है? उसकी है। यज्ञ उसका है। तो ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, दरवाजा, खिड़की या कोई मार्जिन, दरवाजा खिड़की या मार्जिन, कोई मार्जिन तो नहीं है, कोई दरवाजा खुला तो नहीं है, कोई झरोखा, कोई खिड़की तो खुली नहीं है जिससे कोई संकल्प और कोई आकर्षण आ जाए। कौन कौन सी खिड़कियां हो सकती है? जिस जिसने खिड़कियां खुली रखी है वो हाथ खड़े करो। खिड़कियां खुली यदि है, सोचो एक कमरा है जिसमें 40 खिड़कियां है, बाहर तेज आंधी आ रही है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां भी बंद है 40, उसमें से एक खिड़की खाली खुली है, बाकी सब बंद है, तो क्या होगा? आंधी तूफान अंदर आएगा कि नहीं आएगा? धूल आएगी? यदि एक खिड़की भी चालू रहे, खुली रहे, तो धूल और मिट्टी और चोर कोई ना कोई तो आएगा। तो बाबा ने कहा है कोई भी मार्जिन ना हो, कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा खुला ना हो। तो खुला है या नहीं है? सब खिड़कियां बंद, सब दरवाजे बंद। दिल का ये जो मकान है, इसमें केवल एक चेयर रखना है बस, जिसमें वो बैठ सके। सोफा मत रख देना, नहीं तो 2-3 आजू बाजू में आके बैठ जाएंगे। एक ही चेयर हो जिसमें वो बैठा हो। चौथा प्रश्न था ये। पांचवा प्रश्न, हे विक्रम, समर्थ की निशानी क्या है? पांचवा प्रश्न है, समर्थ की निशानी क्या है? क्या है समर्थ की निशानी? मुरली का हेडिंग ही है, संकल्प बोल कर्म स्वभाव और संस्कार सभी कैसे हो? उसके समान। साथ में अगला प्रश्न भी ले लेते हैं ताकि दोनों की चर्चा हो सके। छठवां प्रश्न, निरंतर योग किसे कहा जाएगा? निरंतर योग किसे कहा जाएगा? अनोखी परिभाषा दी है बाबा ने यहां पर। जैसे सहज योग की परिभाषा दी है, वैसे निरंतर योग की भी परिभाषा दी है। निरंतर योग अर्थात क्या? सब कुछ उसका, मेरा कुछ भी नहीं। ये शब्द जो है, मेरे संकल्प जो आगे कहा, मेरे संकल्प, मेरा संस्कार, क्या करूं, कैसे करूं, ये सारे कमजोरी के शब्द है। निरंतर योगी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, संपूर्ण समर्पण। एक बहुत सुंदर सूफी कहानी है जिसमें एक बूढ़ी एक औरत होती है, एक बुढ़िया जो रोज सुबह अपना घर साफ करती है और जो भी कचरा होता है उसको वो जो घूर जिसको डस्टबिन कहते हैं उसमें डालते समय कहती थी कि परमात्मा ये तुझे समर्पण, कचरा घर का कचरा। लोग उसको कहते थे तुम ये क्या करती हो, वो कहती है मेरा जब सब कुछ मैंने उसको अर्पण कर दिया तो घर का ये जो मेरा कचरा है वो भी डालते समय वो कहती थी तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा ही है, मैं ये तुझे ही अर्पण कर रही हूँ। तो दिखाया एक दिन एक सूफी संत वहां से गुजरता है और वो देखता है ये बुढ़िया क्या कर रही है, घर का सारा कचरा और डालते हुए कह रही है कि तेरा है परमात्मा तुझे अर्पण। वो कहता है माई जरा ठहर, तू ये क्या कर रही है, कचरा भगवान को अर्पण कर रही है। अरे भगवान को लोग फूल अर्पण करते हैं, मिष्ठान्न अर्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं इतनी ना समझ नहीं, मेरे पास जो भी है जीवन में सब कुछ उसके लिए है, तो फिर मैं इस कचरे को क्यों छोड़ दूं, मेरे घर का ये जो कचरा है ये भी उसी को अर्पण। तो वो उसको बहुत समझाता है परंतु वो नहीं समझती, वो कहता है छोड़ो जाने दो। सूफी संत अपने घर जाता है, रात में स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है वो भगवान के महल में खड़ा है, भगवान के दरबार में सुबह सुबह खड़ा है, सुबह का समय है, सूरज उग रहा है, पंछियों की चहचहाट, सुंदर वातावरण है, भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है, सुबह का समय और सुबह जैसे हुई और वो सूफी संत खड़ा है और ऊपर से एक टोकरी भगवान के सिर पर गिरी कचरे की। तो भगवान कहते हैं ये माई कभी चूकती नहीं है। तो वो सूफी संत भगवान से कहता है क्या आप इसे कुछ बोलते नहीं, ये सुबह सुबह आपके सिर पर कचरा डाल देती है। वो कहता है तुम जरा ठहरो। तो वो सूफी संत शाम तक ठहरता है, धरती के सारे लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई फूल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु सूफी संत देखता है भगवान के सिर पर कुछ गिर ही नहीं रहा है, गिरा था तो बस वो सुबह जो कचरा गिरा था वही गिरा है बस। और ये भगवान से पूछता है ऐसा क्यों, वो सब कहां गया। तो भगवान उससे कहते हैं कि ये जो धरती निवासी है सब आधा आधा देते हैं, पूरे दिल से कुछ भी नहीं देते, इसके लिए मुझ तक कुछ भी नहीं गिरता। और इतना वो भगवान कहते हैं और वो सूफी संत की आंख खुलती है, पसीना पसीना, धड़कन बड़ी हुई और सोचता है मैं भी तो ऐसे टुकड़े टुकड़े ही दे रहा हूं जीवन में भगवान को, क्या यही प्यार है भगवान से। परमात्मा प्रेम अर्थात समग्र समर्पण, संपूर्ण समर्पण, टुकड़े टुकड़े वाला नहीं, आधा आधा वाला नहीं, सब कुछ। सहज योगी अर्थात निरंतर योगी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। और समर्थ अर्थात उसके समान। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा अध्ययन किया है, अध्ययन से यह पता चला है कि पति पत्नी लंबा समय साथ जब रहते हैं तो एक जैसे जैसे दिखने लगते हैं। 30-40 साल के बाद देखा होगा आपने भी, पति पत्नी जो साथ में रहते हैं थोड़ा थोड़ा उनका चेहरा एक जैसा होने लगता है, इस पर अध्ययन हुआ है। जो जिसके साथ रहता है वो उसके जैसे होने लगता है, जो उसके संकल्प हमारे संकल्प, जो उसके बोल वो हमारे बोल, जो उसके कर्म हमारे कर्म, जो उसका स्वभाव और जो उसका संस्कार वो हमारा स्वभाव। कब होगा, जब उसके साथ रहेंगे तब। तो हे विक्रम कैसा है ये सब, स्वभाव संस्कार संकल्प बोल कर्म बात समान है, और यदि नहीं है तो क्या कर दूंगा मैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सातवां प्रश्न, जैसे वर्षा निरंतर है, सदाकाल का है, जैसे याद सदाकाल की है, ऐसे माया जीत सदाकाल के बने हो। क्या पूछा? ऐसे माया जीत सदाकाल के, सदाकाल के हर समय हर स्थान पर और हर परिस्थिति में, ऑल टाइम ऑल प्लेसेस ऑल सिचुएशंस में माया वार न करे, इस अवस्था को कहा जाता है माया जीत। ऐसा नहीं कि खाली मधुबन में है तो माया का आक्रमण नहीं है, यहां से घर जाते ही क्रोध लोभ अहंकार काम, यहां मन विकारों से मुक्त है, परंतु क्या इसे माया जीत कहा जाएगा? बेताल प्रश्न पूछ रहा है, सदा काल के माया जीत हो, क्या उत्तर है? यदि है तो ही वो उड़कर चला जाएगा और भाग जाएगा, और यदि नहीं है तो छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा, परेशान करेगा, हैरान करेगा, नए नए रूपों से हर दिन आएगा। सदा काल के माया जीत, जैसे याद सदाकाल है, जैसे वर्षा सदाकाल का चाहते हो, उसी तरह माया जीत भी सदा काल के हो। तो ये था सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, फाउंडेशन भूमि से आए हो, लंदन से मुलाकात, लंदन ग्रुप से मुलाकात है, क्या कह रहे बाबा उनको? क्योंकि तुम कहां से आए हो? फाउंडेशन भूमि से आए हो, तो क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तुम फाउंडेशन भूमि से आए हो, इसके लिए तुम्हारा फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? मजबूत। हमारा ज्ञान योग और धारणा का जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां ऐसी आ गई तो उस दिन अमृत वेला नहीं हुआ, योग में कोई अनुभव नहीं हो रहा है, स्थिति डगमग ऊपर नीचे, इसे मजबूत नहीं कहा जाएगा। मजबूत अर्थात शक्तिशाली। और एक चीज रह गई थी, तेरा और मेरे की बात बाबा ने कही है, कहीं पर मिक्सचर ना हो, कहीं पर मिक्स ना करो, बेदाग हीरा बनना है, बेदाग हीरा, ऐसा हीरा जिसमें कोई दाग ना हो, कोई विकारों का दाग ना हो, कोई कलंक ना हो, ऐसी निष्कलंक पवित्रता। आठवां प्रश्न, खेल ड्रामा, विदेशी लोग क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं, और ड्रामा में क्या दिखाते हैं? माया दिखाती है कि एक माया बनता है, परंतु बाबा ने कहा यहां तक नहीं, रुक जाओ, अब माया का रूप परिवर्तन कर दो। क्या करना है? माया को कैसे जीतना है? उसका रूप ही बदल जाए। एक अव्यक्त वाणी है बहुत पहले चली हुई 70s में, जिसमें बाबा ने कहा है पांच विकार जो है उनको परिवर्तन कर दो, काम जो है उसको क्या कर दो। इसी मुरली में भी कहा है कि जो दैहिक दृष्टि है जिसे तुम काम कहते हो, उसे आत्मिक प्रेम स्पिरिचुअल लव में उसको रूपांतरित कर दो, काम को परिवर्तन कर दो आध्यात्मिक प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में, क्रोध को परिवर्तन कर दो योग की अग्नि में, क्रोध भी अग्नि है, उस अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तन कर दो, मोह को परिवर्तन करो, जो मोह संसार के व्यक्तियों में है अब वही मोह भगवान में हो जाए। उस मुरली में कहा है ट्रस्टीपन, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अहंकार को किस में परिवर्तन कर दो? ईश्वरीय नशे में परिवर्तन कर दो। जो संसार के व्यक्तियों के प्रति अहंकार या वस्तुओं के प्रति, साधनों के प्रति, विशेषताओं के प्रति अहंकार है, वो अब हो जाए ईश्वरीय प्राप्तियों के प्रति शुद्ध नशा। विकारों को से युद्ध नहीं करना है, उनको क्या करना, रूपांतरित कर देना, बदल देना, उनकी दिशा संसार की ओर है। क्रोध यदि किसी व्यक्ति पर आ रहा है तो क्रोध का रूप परिवर्तन कर देना कि मैं अब तक क्यों तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरा भगवान से उतना प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए। क्रोध की दिशा ही बदल दो, उसको योग अग्नि में परिवर्तन कर दिया। काम जो देह दिख रहा है, उस हरेक व्यक्ति इन विकारों से गुजरा है और विकारों से मुक्त होने की विधि भी है उसके नरक को समझना, विकारों के नरक को समझना। हर व्यक्ति अहंकार की यात्रा उसने की है और जब अहंकार से उसने जो भी कर्म हुए हैं उसके हाथों से कैसी यातना हुई है, उसी को खुद को जब क्रोध किया है तो हरेक को पता है कैसा वो रात, कैसा वो दिन था जब वासनाओं ने पकड़ा था। क्या मन शांत था, स्थिर था, परमात्मा प्रेम में तल्लीन था कि नीचे के तल पर था, देह के तल पर। काम, क्रोध, लोभ, संसार की वस्तुओं का संग्रह नहीं, ईश्वरीय प्राप्तियों का संग्रह, इसमें रूपांतरित कर दो लोभ को। सारे विकारों को रूप भी बदल दो। बाबा ने कहा जो खेल तुम दिखाते हो वह पूर्ण है। पूर्ण खेल क्या होगा, माया अपना रूप ही बदल दे, स्वरूप ही बदल दे, ऐसा खेल करो। अगला प्रश्न, यहां खेल की बात की बाबा ने, उसके बाद में है कि विश्व कल्याणकारी जो तुम हो उनका लक्ष्य क्या है। लंदन निवासियों से मुलाकात, क्या लक्ष्य बताया, बताइए क्या लक्ष्य है। फरिश्ता बनना, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। तो विश्व कल्याणकारी का ये जो जीवन है, स्व उन्नति जो करनी है, उसमें क्या करना है, एक लक्ष्य रखना है। सभी ने रखा है ये लक्ष्य फरिश्ते का, स्वयं को देह के भान से परे रखना। सारे दिन भर की दिनचर्या में हर वो अवस्था जो हमको देह भान से परे रखती है वो फरिश्ता स्थिति है। फरिश्तों का बहुत गायन है, हर धर्म में गायन है, हर धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं फरिश्तों को। मुख्य रूप से तीन धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन जिसको कहते हैं, इब्राहिम हिंदी में जिसको अब्राहम कहते हैं, उर्दू में इब्राहिम, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन तीन धर्मों में मुख्य रूप से। पारसी धर्म में भी उसका है गायन कि हर एक व्यक्ति एक फरिश्ते के साथ एक गार्डियन एंजल होता है हर व्यक्ति का। हिंदू धर्म में फरिश्ता शब्द तो नहीं है परंतु देवदूत शब्द जरूर है, और देव और एंजल इन दोनों का धातु जो रूट वर्ड है वो एक ही है। तो जैसे वहां फरिश्ते हैं, यहां तुमको क्या लक्ष्य रखना है कि मैं फरिश्ता हूं। उसको मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहा जाता है, प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है, मानवता की के रक्षक है वो। तो वो फरिश्ते जिनका गायन शास्त्रों में है वो हम हैं। ये लक्ष्य रखना अर्थात उस देह के भान में से अपने आप को परे रखना। मैं फरिश्ता हूं, और फरिश्ता बनने की विधि क्या है, यही विधि है कि मैं फरिश्ता हूं। यही विधि है कि मैं हूं, बनना नहीं है, मैं हूं। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है ये, निरंतर यह याद रखना कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। फिर बाबा ने पूछा है, यदि बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अगला प्रश्न, यदि बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा, फिर से वही कि सब कुछ उसका समर्पण भाव, इस समर्पण को अपने अंदर लाना है। किसी अन्य मुरली में बाबा ने समर्पण की भी परिभाषा दी है, तन का समर्पण, मन का समर्पण, धन का समर्पण, समय का समर्पण। तन मन, मन में संकल्प आ गया, धन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, संस्कारों का समर्पण और पुण्य कर्मों का समर्पण, कर्मों का समर्पण, सब कुछ अर्पण कर दो। कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्ता को छोड़ना है। क्या करना है? कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्ता जो है उसको छोड़ना है। कर्म करने का जो भाव है, मैं कर रहा हूं, इस कर्तत्व को छोड़ना है। कर्तत्व का यह जो भाव है, मैं नहीं कर रहा हूं वो करा रहा है, यह भाव। तो फरिश्ता बनने की विधि बाबा ने बताई है, कौन सी? सब कुछ अर्पण कर दो, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कर्मों में, सब कुछ स्वाहा, सब कुछ उसका, यह भाव। अगला है 12th, अगला प्रश्न है जो पूछा जाए है जा रहा है, डबल पालना क्या है? बाबा कह रहे विदेशियों को, तुम सबको कौन सी पालना मिली है? डबल। कौन कौन सी? एक तो बाबा की और दूसरी सभी निमित्त आत्माओं की, सभी दादियों की। तो हम सबको भी डबल पालना मिली है, इसका नशा हो। अगला एक प्रश्न है, लंदन निवासी अर्थात क्या? 13वां प्रश्न, लंदन निवासी अर्थात क्या? बहुत सुंदर उत्तर बाबा ने दिया है, लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट नो कंफ्यूजन। स्वराज्य अधिकारी होकर किंग और क्वीन बनने वाले, रूहानी जीवन, अलौकिक जीवन वाले, कंप्लेंट से भरा हुआ जो चित्त है वो कभी भगवान पर एकाग्र नहीं हो सकता। कंफ्यूजन से भरा जो मन है, बाबा ने कहा साकारी आकारी निराकारी को फॉलो करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। वहां कंप्लेंट से भरा हुआ जो मन है, क्यों कंप्लेंट है? अपनी कंप्लेंट्स को लिखो, उनको समझो और सोचो, तो पता चलेगा ये सारा जो है वो मनोकल्पित ही है, हमारी ही निर्माण किया हुआ है, हमारी ही रचना है ये सारी कंप्लेंट, सारी शिकायतें। अस्तित्व वास्तविकता कुछ और है। फिर 14वां और 15वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न लिए हैं कुमारियों से मुलाकात। तो कुमारियों के लिए पहला प्रश्न, 14वां प्रश्न, कुमारियों को के को कौन सा भाग्य प्राप्त हुआ है? क्या कहा बाबा ने इसके लिए, कौन सा भाग्य प्राप्त हुआ है? दिल के डिब्बे में कि तिजोरी में? तिजोरी में। चलो डिब्बी भी ठीक है। तो बाबा ने सबको अपने दिल की तिजोरी में रखा है। कुमारियों को संसार में भी महान और श्रेष्ठ माना जाता है, तो यहां पर भी महान और श्रेष्ठ है, प्योर लाइफ है उनकी। बाबा उनको बचा कर रखते हैं, इनवैल्यूएबल, ऐसे अमूल्य रत्न है वो। चाहे कुमार जीवन कहो या कुमारी जीवन कहो, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी वाले जो है वो बाबा को बहुत प्रिय है, जिनका पवित्र जीवन है, शुद्ध जीवन है। तो बाबा ने कहा है उनका भाग्य का, अपने भाग्य को अपने सामने रखो, सेवा में और पढ़ाई में बिजी रहो, डबल लाइट हो। जो खजाने मिले हैं वो खजाने दूसरों को दो, बांटो, ये 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बाबा ने कुमारियों को कहां रखा है? कहां रखा है? अपने दिल के तिजोरी में बचा के रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ सकती वहां पर। तो स्वयं को ऐसा समझना कि मैं कहां हूं, बाप के दिल के डिब्बी में, बाप के दिल के तिजोरी में बंद हीरा हूं। अगले दो प्रश्न हैं 16वां और 17वां, टीचर से मुलाकात। 16वां प्रश्न, टीचर्स सभा में बहुत सारे टीचर्स भी बैठी है, टीचर्स को बाबा ने क्या कहा? कहां बैठी है टीचर्स? सबसे पहले तो स्टेज पर है, स्टेज पर है, बेहद के स्टेज पर है। और आंखों के सामने कौन से लोग हैं, कौन सी ऑडियंस है? बेहद की, सारे विश्व है, और वो सारे विश्व देख रहा है टीचर्स को। टीचर्स को स्टेज अर्थात वो स्टेज है सेंटर, सेंटर एक स्टेज है जहां पर सारे विश्व की आत्माएं देख रही है, कातर नजरों से देख रही है, कुछ प्राप्ति चाहती है, उनको कुछ चाहिए। इसके लिए अगला प्रश्न ये भी है कि टीचर्स को क्या बनना है, क्या स्वरूप होना चाहिए टीचर्स का? महादानी और वरदानी, उनको वरदान देना है, उनको कुछ देना है। खाली हाथ कोई भी सेंटर पर जो आए वो न जाए। टीचर्स शोकेस जो है संसार का, उसमें कौन है? शोपीस है। कितनी सुंदर बात है टीचर्स से बाबा ने की। टीचर्स को क्या कहा बाबा ने? कौन हो तुम? मेरी फ्रेंड्स। बाबा को टीचर्स, खाली वो टीचर्स नहीं है, सभी हम सभी टीचर्स है। तो बाबा के सब कौन है? फ्रेंड्स। बाबा कह रहे तुम मेरे फ्रेंड हो। जैसे उस फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर किया जाता है, जो माँ बाप को भी नहीं बताते, भाई बहन को भी नहीं बताते संसार में, वो किसको बताते हैं? फ्रेंड्स को बताते हैं। क्या ऐसा भगवान को हमने अपना परम मित्र, परम सखा बनाया है कि उसके सामने बैठो, मुरलियों में था ना, सुबह सुबह अव्यक्त वतन में आ जाओ, सूरज की रोशनी, चांदनी की चांदनी, खेलकूद और पिकनिक करो, बुद्धि रूपी विमान, डबल रिफाइंड पेट्रोल एवर रेडी होना चाहिए, सारी बातें कही अभी अभी। तो उस फ्रेंड के साथ शेयर करो, उस फ्रेंड के साथ घूमो फिरो, उस फ्रेंड को लेटर लिखना, उस फ्रेंड के साथ बात करना। बाकी सारे फ्रेंड्स जो है उनका कोई भरोसा नहीं है, ये एक अविनाशी इटर्नल फ्रेंड है। तो फिर से विक्रम को वो बेताल पूछ रहा है, 17 प्रश्न पूरे हुए, अगर उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा, और यदि उत्तर हां है तो मैं चला। अभी दूसरी मुरली जिसमें 8 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हाँ ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छी है, कुमारियों के लिए भी कहा कि बाबा जब प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा हाँ करो कि सारी दुनिया सुने, इतने जोर से करो। और टीचर्स को भी कहा, क्या कहा? कि बाबा को बुलाओ, बाबा ओबीडियंट है, तो हजार भुजाओं सहित बाबा आ जाएगा। बाबा को आने को कितना दिन बाकी है? 8 तारीख को बाबा आ रहे हैं, कितना दिन? 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन। बाबा को आह्वान करना है हर दिन, एक बार सुबह, एक बार शाम, और बीच बीच में दिन भर में। तो बाबा के महावाक्य है, बाबा को बुलाओ, बाबा का आह्वान करो, तो हजार भुजाओं सहित वह हाजिर होगा। कहीं पर भी एकदम बिजी है दिनचर्या में, कुछ काम कर रहे, सेवा कर रहे, अचानक उसका आह्वान करो और यह अनुभव कि वो हमारे सामने अवतरित हो गया है, प्रकट हो गया है। ये अनुभव करना है, ये अभ्यास करना है बाबा के आने तक, ठीक है। अभी दूसरी मुरली, उसमें 8 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, स्वराज अधिकारी किसे कहा है बाबा ने? ये मुरली है 11 तारीख की, जनवरी मास 83, पहली मुरली थी 11 तारीख की, ये है 13 तारीख की। तो स्वराज अधिकारी किसे कहा है या क्यों बनना है? जो अभी स्वराज्य अधिकारी है वही आगे क्या होंगे, क्या बनेंगे? चक्रवर्ती सम्राट, या कहो चक्रवर्ती राज्य के अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात ये प्रश्न है, अर्थात है सारे ही जन्मों को जानना, अपने सारे ही जन्मों को जानना। ये जो यात्रा है बाबा ने, इसके लिए भी एक प्रश्न है, वो आगे का प्रश्न है, उस पर आएंगे हम। ये रोज अमृत वेले का अभ्यास आपको बताएंगे जो करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है स्वराज्य अधिकारी अर्थात क्या। स्वराज्य अधिकारी अर्थात यदि अभी स्वराज्य अधिकारी है तो भविष्य में चक्रवर्ती राज्य अधिकारी होंगे, और स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने सारे ही जन्मों को जानना, हर जन्म में कैसे हमने विशेष पाठ बजाया है वो जानना, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इस संगम युगी जीवन को अमूल्य क्यों बनाना है? क्योंकि उत्तर है अमूल्य इसलिए बनाना है क्योंकि ये संगम युग का जो जीवन है, जो सबसे नीचे सीढ़ी में दिखाया है, इसको यदि अमूल्य बनाया तो सारे ही चक्र में, पूरे ही सीढ़ियों में जितने हमारे पार्ट होंगे वो सभी हीरो पार्ट होगा। सबका आधार कौन सा है? सोचो ये जीवन है। यदि हर दिन, हर समय, हर सेकंड ऐसा हीरो पार्ट हमारा हो तो सारा ही सीढ़ी में जितने जन्म है वो सारे हीरो पार्टधारी होंगे। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि नॉलेजफुल अगर बने हो तो क्या स्मृति में रखना है? नॉलेजफुल को ये स्मृति में रखना है, उत्तर है कि मेरे सारे ही जन्मों को मैं जानने वाली आत्मा हूं, और हर जन्म में कैसा पार्ट रहा है? हीरो पार्ट रहा है। बाबा ने कहा ये जो चित्र है केवल नॉलेज के चित्र नहीं है, ये जन्म पत्री के चित्र है, ये मेरी जन्म पत्री है। ये सोचो, छह मुख्य धर्म है संसार में, उसमें से तीन धर्म जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, उनका कहना एक ही जन्म है बस। फिर से वही तीन, अब्राहमिक रिलीजन, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, एक ही जन्म है। परंतु भारत के तीन जो मुख्य धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों ही पुनर्जन्म को मानते हैं, और इनका कहना है कि आत्मा मुक्त हो सकती है इस चक्र से, मोक्ष कैवल्य या निर्वाण कहा। पुनर्जन्म की बातें बाबा यहां कर रहे हैं। एक अभ्यास जो करना है वो नीचे से यात्रा चालू करनी है। योग में कल सुबह जब बैठोगे तो ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस समय इस तन में हूं, इसके पहले दूसरे तन में थी, कभी स्त्री के तन में, कभी पुरुष के तन में, कभी नीचे से यात्रा चालू करना, ऊपर ऊपर जाना, कलयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता, फिर सतयुग, और फिर वहां से जंप लगाकर परमधाम। ये भी एक अभ्यास है स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव नष्ट करने के लिए, कि मैं आत्मा अभी पुरुष तन में हूं, इसके पहले स्त्री तन में थी, उसके पहले पुरुष तन में थी, ये अभ्यास करना। तो ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है क्या ये नशा है कि सारे ही कल्प में हमारा पाठ, विशेष पाठ रहा है, और किसके साथ रहा है? ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती के साथ हमारा पाठ रहा है। ये नशा हो, बाबा ने कहा परम धाम जाने का इरादा तो नहीं है, वो जीवन उसको याद करो, उस स्वरूप को याद करो, उस राज्य को याद करो। कौन से राज्य को, कौन से जीवन को, कौन से स्वरूप को? सतयुग के। शुरुआत में नहीं आए, पहले नहीं आए तो क्या देखा? यदि शुरुआत को नहीं देखा तो क्या देखा? तो बार बार ये चक्र फिराना है। ये चित्र खाली समझाने के लिए नहीं है, सोचो कि मैं यहां हूं और ऊपर 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 और फिर नीचे नीचे नीचे। बाबा ने कहा ना जिन की तरह चक्कर लगाते रहो ताकि इससे देहभान नष्ट होगा। तो और एक चीज का है, दोनों चित्र सामने रखो कि ये ब्राह्मण और ये फरिश्ता, दोनों की महिमा अपरंपार है, दोनों ही श्रेष्ठ है, और बीच के जो जन्म है 82 वो भी सारे श्रेष्ठ, एक फर्स्ट एक लास्ट और बीच में 82 वो भी सारे श्रेष्ठ। तो ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मधुबन के लिए है, जो भी जिस समय मधुबन में है अर्थात वो कौन है? मधुबन निवासी है। तो मधुबन निवासियों सदा स्मृति स्वरूप है, ये प्रश्न है। यदि मधुबन में आकर भी बुद्धि भटक रही है तो क्या कहेंगे? यदि मधुबन में है, मधुबन की इस पावन भूमि में है और यहां पर भी स्मृति स्वरूप नहीं है तो कहां रहेंगे? ये पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, क्या वरदानी स्वरूप में हो, वरदानी मूर्त हो? मधुबन के गेट में प्रवेश करना अर्थात क्या सदा काल के लिए वरदान ले लेना। जब यहां आए हो, चाहे सेवा के लिए आए हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस के लिए या कोई भी बात के लिए, यहां का फायदा ले लेना है। अपने आप को चेक करना, अपनी स्थिति को महान बना लेना, नहीं तो कभी ऐसा समय ऐसा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा। छठवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, अगर यहां बाबा ने कहा है संपन्न स्टेज जो है उसमें क्या होना चाहिए, नाचना और गाना। वरदान में भी बहुत पावरफुल पॉइंट कही है, निराश नहीं होना है। कितना देर के लिए, एक सेकंड के लिए भी और एक मिनट के लिए भी निराशा को नहीं आने देना। संपन्न स्टेज की स्थिति का क्या गायन है, सदा नाचते हुए और सदा गाते हुए। और लास्ट प्रश्न है, महादानी अर्थात क्या, किसको आगे रखना है? जैसे तुमको चांस मिला है तुम दूसरों को चांस दो, जैसे भारत वालों ने तुमको चांस दिया है, वैसे दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी अनुभव करना, यह है महादानी बनना। तो ये टोटल कितने हुए, 8 प्रश्न। तो पहली मुरली से हमने बताए 17 प्रश्न और दूसरी मुरली से 8, टोटल 25। तो हे राजा विक्रम, यदि इनमें से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर नकार में है तो वो बेताल बैठा रहेगा, परेशान करते रहेगा। और यदि हमने उत्तर सही दे दिया तो उड़कर वो भाग जाएगा। कहानी फिर से आगे बढ़ाते हैं और क्लास को पूरा करेंगे। उस कहानी में दिखाया है कि 25 बार वो पकड़ के लाता है, आखिरी बार जब लाता है तो वो तांत्रिक जो होता है उसकी ये चाल होती है, जो कि वेताल उस विक्रम को बता देता है। और इससे पहले कि विक्रम झुके, वो तांत्रिक को ही झुकने को कहता है। वो तांत्रिक का तो इरादा होता है विक्रम की बलि चढ़ाने का, परंतु वहां पर दिखाया है कुछ इस तरह से कि विक्रम उसको झुकने को कहता है, वहां पे काली माँ प्रकट होती है वगैरह वगैरह दिखाया है। और लास्ट में वेताल हमेशा के लिए चला जाता है और तांत्रिक को वो विक्रम उसके सारी कुबुद्धि से और कुमन से मुक्त कर देता है उस देवी के आशीर्वाद से। इस तरह से ऐसी कुछ अजीबोगरीब कहानी है वो। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ये दो माया रूपी पिशाच है, बेताल है, जिसने हमें पकड़ रखा है, उससे स्वयं को मुक्त करना है। उससे क्या करना है, स्वयं को मुक्त करना है। ऐसे माया जीत बनना है, जो बाबा ने कहा माया का रूप ही परिवर्तन कर दो, संपूर्ण परिवर्तन। तो सभी इस मुरली को फिर से पढ़ेंगे, इस पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे और बाबा आने को कुछ दिन बाकी है तो अपना कुछ एक प्लान बनाएंगे पुरुषार्थ का, ताकि हमारा भगवान से जो मिलन है बहुत पावरफुल हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, आत्मा में नव चेतना उसमें भर जाए। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा और कुछ स्वयं के लिए धारणाओं को स्वयं बनाना पड़ेगा। सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।